चलिए रोजे की सुन्नतें पहले समझ लीजिए कि सुन्नत और फर्ज का फर्क क्या है। फर्ज क्या होती हैं या वो चीजें फराइज या अरकान के जिनको छोड़ने से वो इबादत खत्म हो जाती है, टूट जाती है। जैसे नमाज टूट जाएगी अगर औरत के सर से जान के वो खुद या वो पूरा दुपट्टा उतार दे, या कुछ ऐसी मिसाल दे रही हूँ सिर्फ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुन्नतें होती हैं। मैं सुन्नतों को कैसे समझती हूँ, डेकोरेशन, फूल बूटे डेकोरेट करते हैं। सादे कपड़े आप पहनते हैं ना, ये फर्ज है आपको अपना जिस्म ढांकना है। कभी कभी आप उस ड्रेस के ऊपर मोती लगा लेते हैं, आप उसके ऊपर बेले लगाते हैं और सो ऑन। सबको समझ आ गया, अब अपने कपड़ों को ना सोचिए, वापस क्लास में रहिए। तो ये जो मोती सितारे हैं ना, ये आपके उस ड्रेस को जिस तरह खूबसूरत कर देते हैं ना। लिखिए आज से, कोई झगड़ा नहीं है, बहस नहीं है, किसी मसलक फिरके इख्तलाफ की बात करें ही ना कभी जिंदगी में। सुन्नतों के झगड़े में आज उम्मत को चार हिस्सों में बांट दिया कुछ लोगों ने। अल्लाह हमारी और उनकी इसलाह कर दे। काल अल्लाह व काल रसूल पे रहिए, इंशाल्लाह सारे झगड़े खत्म होंगे। तो रोजे की सुन्नतों से मुराद आप इसका एक निक नेम रख लीजिए, लाड का और प्यार का। रोजे को सजाने वाली, खूबसूरत करने वाली चीजें, डेकोरेशन ऑफ रोजा क्या है? नंबर एक, सहरी में ताखीर करना। ये क्या होती है भाई? क्या मतलब सुबह उठ के भी खाते रहें क्योंकि आंख ही देर से खुली? नहीं, ये हमारे उन भाई बहनों को पैगाम है अल्लाह की तरफ से और नबी के जरिए कि देखो सहरी के लिए उठा करो। ये नहीं कहो मैं अब सोने से पहले ही खा लेता हूँ, फिर मुझसे उठा नहीं जाता। आज से अपने लिए नियत कीजिए कि सहरी के इंतजार में रात को नहीं जागना। या नंबर दो, जागते रहे नमाज पढ़ी, ईशा पढ़ी, चाय पी, कावा पिया, बातें की, चिट चट, 12 बज गए। अच्छा ऐसा करती हूँ कि मैं अब भी कुछ खा लेती हूँ, सुबह नहीं होगा। चलो बच्चों इधर आओ, आओ क्या खाना है, किसने, सब बोलो। नहीं, ये टोन नहीं रखनी हमने। और फिर उसमें क्या हुआ कि आप रात 1-2 बजे खा पी खिला के सोए, अच्छा आप खा लिए सहरी, अब तो उठना नहीं। वल्लाही आपने अपनी फजर को रिस्क पे रखा। जहाज में दाखिल होने से पहले के जो मराहल है ना, उसको जहन में रख लीजिए। आपको घर से 2 घंटे पहले निकलना ही पड़ेगा और वहां लाइनों में लगना पड़ेगा, और बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको आखिरी रूम में कोई आधा पौना घंटा वेट करना ही पड़ेगा। इसी तरह रोजा भी है। आखिरी वक्त कौन सा होता है ताखीर का? जिसके फौरन बाद फजर का वक्त शुरू हो। तो सहरी खाइए, मुराद ये है, और बिल्कुल फजर से पहले के टाइम पे छोड़िए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग छोड़ दो अजान हो गई, घुघू बोल गया, अब तो पता नहीं वो घुघू वाले भी नट पे ही आ गए होंगे कहीं, क्या मसला है। हम अपने बचपन में जानते थे घुघू की आवाज पे शोर मत जा, छोड़ दो, और जो नवाला हाथ में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आगे हम कुछ चीजें देख लेंगे। चलिए अगली चीज देखिए, गरूबे आफ्ताब के बाद इफ्तार में जल्द करना सुन्नत है। ये भी बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। कुछ लोग हैं क्या दुआएं मांग रहे हैं, बल्कि कुछ तो उल्टे हाथों से मांग रहे होते हैं। क्यों भाई, खोल ले रोजा, खोल गया, नहीं, मैं दुआएं मांग लूं, ये बड़ा कीमती वक्त है। नहीं, उस वक्त कब खाना पड़ेगा आपको, यानी जूं ही नमाज से मगरिब का इब्तदाई वक्त शुरू हुआ आपको खाना पड़ेगा। रोजा लंबा करते जाना सोच सोच कर के मुझे और सवाब हो रहा है, याद रखिए ये अल्लाह के हुक्म से खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे साथियों को कहीं जाने का हुक्म दिया और उसके बाद आपने नमाज शुरू कर दी। सलाम फेरी तो देखा एक सहाबी अभी वहीं बैठे हुए हैं, बाकी जा चुके हैं। पूछा क्या हुआ भाई साथी, आप क्यों इधर है? कहा मैंने सोचा कि मेरी तो सवारी बड़ी तेज है और मैं तो जल्दी से उनसे मिलूंगा, तो मैं आपके पीछे नमाज का अजर क्यों खोऊं? तो आपने फरमाया कि तू अब कभी भी उनके अजर को नहीं पा सकेगा। तो याद रखिए, समय ना वाताना। आपको अपना वही बच्चा अच्छा लगता है जो सुनते ही उठ पड़े और जो बैठकर मसले ही पूछता रहे कि अच्छा ना करूं तो क्या होगा, ये फर्ज है मेरा उठना कि ये सुन्नत है, नफिल है, क्या गुनाह होगा, और आप मेरे भाई को क्यों नहीं कहती और मुझे क्यों कहती है? आप कहेंगे बैठे रहो, इसकी तो आदत ही है सवाल पूछने की। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम जो तवक्कुआत अपने बच्चों से रखते हैं उससे बहुत बड़ी बड़ी हम चीजें अल्लाह ताला के हुक्म पे मान सके। फिर इफ्तार क्या है? रुतुब यानी तर खजूरों के जरिए किया जाए, और रुतुब यानी तर खजूरें ना मिलें तो तमर यानी सूखी खजूरों के जरिए इफ्तार किया जाए, और अगर ये भी ना मिले तो पानी के जरिए, और अगर पानी भी ना मिले तो किसी हलाल खाने के जरिए इफ्तार किया जाए, और अगर ये भी ना मिले तो किसी हलाल चीज के मिल जाने तक इफ्तार की नियत ही कर ले। अच्छा इसमें नमक कहीं नहीं आया। हमारे कल्चर में कहते हैं नमक से रोजा खोलो, फिर वो नमक बाद में पकौड़ों में बदल गया और समोसों में ढल गया। तो ऐसी कोई बात नहीं, नमक की कोई हदीस नहीं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए खजूर, पहले फ्रेश खजूर, रुतब होती है डेट्स, फ्रेश डेट्स खोले ना तो उसके अंदर एक गीलापन होता है, वो ना मिले तो खुश खजूरें जैसे छुहारे घरों में होते थे पहले, अब तो मुझे नहीं पता, अगर वो भी ना मिले तो फिर पानी, ठीक है। ये अब आपका दिल है, पानी में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाल रहे हैं और दूध भी डाल रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज की बात नहीं है, हलाल खाने से ही, इस पे बाद में गौर कीजिएगा। सारे दिन की मेहनतों को किसी ऐसे खाने से ना इफ्तार कीजिए जो किसी का हक मार के खाया गया हो और लाया गया हो, और किसी भी नाफरमानी के तरीके से आया हुआ रिस्क हमारी इबादत को खिल कर देगा। अगली चीज़ देख लीजिए, रोज़ेदार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इताअत के काम करना और तमाम बुराइयों से बचना सुन्नत है। बात समझिएगा, क्या ये सिर्फ रोजे के साथ ही है ना? हाँ हाँ नहीं, आजकल सब नहीं, बंद करो, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, क्योंकि रोजे हैं जी। कीजिए अल्लाह का नाम लेके इस रमजान के लिए नियत कीजिए कि नाफरमानियां छोड़नी है, बुराइयां छोड़नी है, फोहश बेकार चीजों को छोड़ना है और अच्छी अच्छी चीजों को इस्तेमाल करना है। चैनल्स बदल लीजिए, आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं जो सारा दिन कुरान की तिलावत और इसी तरह से नमाजें वगैरह दिखाते हैं, तो इसको रिप्लेस कीजिए, यानी बुरी चीजों को अच्छी चीजों से। फिर उसके बाद यह है कि सुबह और शाम को मिसवाक करना भी सुन्नत है। एक एक मिसवाक तोहफे में दीजिए एक दूसरे को, आप मुझे दें मैं आपको दूं, मुराद क्या है कि घर में एक दूसरा दूसरे को दे, आपने खरीदी है तो हमसायों को दे दीजिए, हमसायों से कहें कि वो आपको दे दें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका अजर मिलेगा। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, रोज़ेदार पर फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी करना, नीस हराम कामों से बचना सुन्नत है। चुनाचे पांचों नमाजों को इनके औकात में जमात के साथ अदा करना, और झूठ गीबत नीस मामलात में धोखा देने से बचना, और तमाम हराम अकवाल और अफाल को तर्क करना लाजिम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने झूठ बोलना और इस पर अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं कि ऐसा शख्स अपना खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह अकबर, इसको तो पढ़ के हमेशा ही खौफ आता है कि अल्लाह बेनियाज है, उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे आपके खाना छोड़ने की। तो खाना छोड़ना तो एक बड़ी छोटी चीज़ है, असल चीज़ है कि नाफरमानी को छोड़ना है, गलत चीज़ों को छोड़ना है। चलिए गो थ्रू करते हैं, रोज़े में लोगों के अहवाल और उनकी किस्में, यानी रोज़ा किस पे फ़र्ज़ है, किस पे नहीं फ़र्ज़, कौन रखे कौन ना रखे, ये भी एक बहुत अहम सवाल होता है हमेशा कि बच्चे रोज़े रखें कि नहीं, बूढ़े रखें, शुगर पेशेंट्स रखें कि नहीं। तो इसमें इंशाल्लाह ताला आपको अब ये चीज़ें मिलने वाली हैं, तो 1, 2, 3 करें। और मैं आपको बता रही हूँ कि आज का सेशन एक गो थ्रू सेशन है, इन सब की मज़ीद डिटेल्स और हवाले हमारे पास मौजूद हैं। पहली बात है कि सौम यानी रोज़ा हर बालिग आक़िल और मुस्तती, मुस्तती कौन है जो उसकी इस्तेतात रख सके, यानी बच्चे की वो एज जिस वक़्त के वो रोज़ा रखने के काबिल हो, और जितना रफ़ एंड टफ़ पालेंगे अपने बच्चों को उतना जल्दी रखेंगे वो रोज़े इंशाल्लाह। और वो माओ के पप्पू और गुड्डू और बिल्लू जिनको सारा दिन शौक ही है कि मामा अब हम क्या खाएंगे और मामा अब आप शाम को क्या बनाएंगी, तो उनको ज़रा आज से ही तैयार कीजिए कि अब ये लाड छोड़िए और ये जो एक चंद दिन रह गए इसमें तो बिल्कुल दाल साल पे आ जाइए, जो ना अच्छा लगे बच्चों को वो बनाइए ताकि उनको कम खाने की आदत हो जाए। और इसी तरह मुकीम और गैर, यानी मुकीम कौन होता है जो अपने घर बैठा हुआ है, गैर मुसाफिर कह लीजिए, इस पर वाजिब है। इसी तरह काफिर रोज़ा नहीं रखेगा, और अगर वो मुसलमान हो गया तो इस पर गुजरे हुए रोज़ों की कज़ा करनी वाजिब नहीं होगी। अल्लाह इस्लाम की दौलत नसीब करे सबको। छोटे बच्चों पर रोज़ा वाजिब नहीं है, लेकिन आदत डालने के लिए इसे रोज़ा रखने का हुक्म दिया जाएगा। इस पे हम बहुत बात कर चुके कल के सेशन, जो हमारे इससे पिछला सेशन था Day 4 का, रमदान विद फैमिली, उसमें बच्चों पे बात हुई है। फिर अगला क्या है, मजनून यानी पागल, क्रेजी, सही पागल, यानी कि किसी की मोहब्बत में पागल, अगरचे बड़ी उम्र का ही क्यों ना हो, आजकल तो वैसे ऐसा भी हो रहा है, इस पर ना तो सौम फर्ज है और ना ही इसकी तरफ से किसी को खाना खिलाया जाएगा। यही हुक्म उस कम अकल का है जो बहुत सारी चीज़ों में तमीज़ नहीं कर पाता, यानी जो जहनी तौर पे हैंडीकैप है, पता ही नहीं है, खुद ही जाके खा लेगा तो पता ही नहीं चलेगा पिले, यानी अल्लाह ने ऐसे बंदे को रुफी अल अकलाम में रखा हुआ है कि उनके अमल नहीं लिखे जाते। फिर नेक्स्ट देखिएगा, दायमी सबब की वजह से, दायमी क्या था, हमेशा का, यानी वो बीमारी या तकलीफ या कैफियत जो ख़त्म नहीं होगी, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह ने रोज़े से एग्जाम किया है किसी हद तक। मसलन बूढ़ा शख्स, अब जवान तो नहीं होगा ना, ये अलग बात है कि उसका दिल जवान हो, इसी तरह वो मरीज जिसकी शिफा याबी की उम्मीद ना हो, बस आप देखिए शुगर पेशेंट्स हैं और इतने शदीद के ये बिल्कुल उनको रखने की इजाजत नहीं और सारा दिन कुछ थोड़ा थोड़ा लेना होता है। ऐसे लोगों की तरफ से हर दिन एक मिस्कीन को खाना खिलाया जाए और किसी का मसल किडनी रिप्लेसमेंट है, जिगर प्रॉब्लम है, देखिए अल्लाह ने तो दे दी रुख्सत। मुझसे लोग पूछें तो मैं एक जुमला अपनी तरफ से ऐड कर देती हूँ, कोई पूछें क्या करें रोज़ा रखे कि नहीं, मैं उन्हें कहती जी रखिए। एक हार्ट पेशेंट थी हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, जिस समय वो दिल के साथ जैसे एक स्टड डलता है ना, तो जब मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर पूछा कि मैंने तो तब से रखा ही नहीं, आज से जवानी में डल गया था। लोग मना करते हैं ये है वो, मैं क्या करूं, और आप चूंकि क्लासेस में आती हूं जाती हूं तो दिल करता है। मैंने उन्हें यही बात कही जब आपसे कहने लगी हूं कि आप सुबह सहरी में सबके साथ रखिए और साथ ही नियत कर लीजिए कि जिस वक्त दिन के किसी हिस्से में तकलीफ हुई या दिल घबराता है या कोई कमी बेशी है या जैसे शुगर किसी की लो होती है, फौरन तोड़ दूंगी। आपको पता है कि एहराम जैसी कैफियत जो हज और उम्रे के लिए आप बांधते हैं उसमें भी ये रुख्सत है कि अल्लाह मैं जहां तो रोकेगा मैं रुक जाऊंगी। किसी को अगर शक हो कि मैं नहीं कर सकूंगा उम्रा या हज तो वो दुआ पढ़ता है, तो रोजे में क्यों नहीं होगा। मैंने उन्हें ऐसे समझा दिया कि आप जहां भी तोड़ सके तोड़, यही चीज आप बच्चों को भी सिखाएंगे। तो खैर किस्सा मुख्तसर, आप वहां रोजा खोल लीजिए, आपकी नीयत का भी अजर है, कोशिश का भी अजर है। आपको पता क्या हुआ होगा, इमेजिन कीजिए, बहुत खतरनाक बात सोच रहे होंगे आप कि उनको मौका ही नहीं मिल सका और उनके दिल ने काम करना छोड़ दिया। नहीं, एंड ऑफ रमदान उन्होंने इस बात की शहादत दी कि मेरा एक भी रोजा नहीं टूटा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये है अल्लाह ताला की तरफ से मदद। जब आप नियत करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है, लेकिन बाहर रुख्सत मौजूद है। फिर ऐसा मरीज जिसे इत्तफाकन बीमारी ने पकड़ लिया हो और शिफा याबी का मुंतजर हो, ऐसा शख्स रोजा तोड़ सकता है लेकिन सेहत याबी के बाद रोजे की कजा करेगा। ये भी हम पीछे सीख चुके हैं कि इद्दतु मिन अय्यामिन उखर, तो फिर तोड़ दीजिए, खोल दीजिए, ना रखिए, लेकिन याद रखिए कि सबके साथ रखना आसान है। सबके साथ हम 30 रोजे भी रख लेते हैं, लेकिन आखिर में जो शवाल में 6 रोजे हैं, अकेले अकेले भी रखें तो बहुत मुश्किल लगते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि वही रोजा छोड़िए जिसको बाद में रखना आसान हो। फिर इसी तरह हामिला और दूध पिलाने वाली, यानी प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर, उसके लिए क्या हुक्म है? अगर हामिला या दूध पिलाने की वजह से रोजा इस पर मुश्किल हो या बच्चे की बीमारी और कमजोरी का अंदेशा हो तो ऐसी औरतें रोजा तोड़ सकती हैं, मामला आसान हो जाने पर अंदेशा जाने के बाद रोजे की कजा करेंगी। तो बात मिल गई, बहुत सारों का ये जवाब, और इनके लिए भी यही हुक्म है जो ऊपर है कि अगर रख लेंगी तो बेहतर ही है, बाद में मुश्किल लगेगा। जैसे एक सवाल आया था एक चंद दिन पहले, तो मैंने उनको यही जवाब दिया, बच्ची खाती भी है और दूध भी पीती, तो मैंने उन्हें कहा कि आप रात भर में, यानी रोजा खोलने से लेके अपने रोजा रखने तक, रात में उस बच्ची को जितना चाहें फीड करवा लें, सुबह में भी करा लीजिए अच्छी तरह, और दिन में उसको ज्यादा से ज्यादा वक्त दूसरे खाने पे लगाइए। और यकीन कीजिए मुसलमानों के बच्चे को रोजे में सब्र आ जाता है, क्योंकि हमारे असलाफ की माएँ जो थी वो अपने बच्चों को रोजे की हालत में दूध इसलिए नहीं पिलाती थी कि इसको भी रोजे का पता चले कि मैं रोजे से हूँ। अल्लाह वो माएँ पैदा कर दे आज भी, तो इंशाल्लाह नस्लें भी इतनी बेसब्री नहीं होंगी कि इधर मुंह से बात निकली और उधर पूरी करने वाली हो। बहरहाल आगे चलिए, ऐसा शख्स जो किसी मासूम के डूबने या आग में जलने से बचाने के लिए रोजा तोड़ने पर मजबूर हो, और ऐसा शख्स रोजे की कजा करेगा, ये किसी भी इमरजेंसी में हो सकता है और अल्लाह ताला आपको मुझे इससे बचा के रखे। फिर इसी तरह से हाइजा और बच्चा जनने वाली औरत रोजा नहीं रखेगी और फौत शुदा रोजे की कजा देगी, यानी औरत जब नफास में होती है बेबी डिलीवरी के बाद के 40 डेज, तो उसमें रोजा नहीं रखेगी इल्ला ये के बीच में प्यूरिटी हो जाए। सेम थिंग हाइजा के लिए है। फिर इसी तरह मुसाफिर अगर चाहे तो रोजा रखे और चाहे तो ना रखे, दोनों में कोई एतराज नहीं कर सकता, लेकिन जहन में रखिए कि बाद में आपने इसको फिर रखना है, पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो फिर वो तो अच्छा है कि आप फिर जिस तरह आपका दिल करे वैसे करे। देखिए एक जुमला समझ लीजिए, जिस तरह अल्लाह को अच्छा लगता है ना कि बंदा उसके अहकामात पे और उसकी शरीयत पे अमल करे, इसी तरह अल्लाह को रुख्सतों को कबूल करने वाला बंदा भी अच्छा लगता है। आप सबकी खातिर आप बैठे हैं रोजे से, दूसरा बगैर रोजे के हैं, अब दूसरों को भी गिल्ट है, आपके मेहमान गए हैं, कोई आपके घर मेहमान आ गया, कोई ऐसी बात नहीं। नफिल रोजे तो छोड़ ही जा सकते हैं, यहाँ तो चूंकि हम फराइज की बात पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए। चलिए, रोजा तोड़ने वाले उमूर कौन से हैं? ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है जो अक्सर साथियों को परेशान रखती है कि मेरा रोजा टूट तो नहीं चुका। तो पहली बात है कि खाना पीना, खा नफा बख्श हो या नुकसान दे। यानी कोई भी जंक खा लें या हेल्दी फूड खा लें और जान के खा रहे हैं तो रोजा तो टूटेगा। मसलन सिगरेट नोशी, इसमें क्या नुकसानदेह चीज आप खाते हैं, सबको पता है। चलिए इसके बाद गिजाई इंजेक्शन लगवाना, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिप लगाना, ताकत का टीका लगाना। अब आप रोजा रख के ड्रिप लगा के लेट जाए तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि रोजा रखा हुआ है। तो गिजाई इंजेक्शन कौन से, जिसके इस्तेमाल के बाद खाने की जरूरत बाकी ना रहे। और इससे रोजा इसलिए टूट जाता है क्योंकि ये भी खाने पीने की एक शक्ल है। हाँ, वो इंजेक्शन जिसके जरिए जिस्म को गिजा फराहम नहीं होती, इससे रोजा नहीं टूटता। मसलन कोई मसल्स का पेन है, गोश्त और नसों में, पट्ठों में कोई तकलीफ है, तो यानी ये जिस्म इंजेक्शन की सूरत में इंजेक्ट होता है तो इसकी लज्जत तो नहीं ना आती हलक में। तो कह लीजिए कि बीमारी से बचने का अगर कोई टीका लगवाता है तो उससे रोजा नहीं टूटता इंशाल्लाह। फिर इसी तरह खून पहुंचाने वाले इंजेक्शन, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्लड ड्रिप, जैसे कि रोजेदार को खून आने लगे और इसको खून देने के लिए इंजेक्शन लगाया जाए। फिर देखिएगा कसदन कै, जिसको वॉमिट करना, उल्टी करना कहते हैं, जान के करेंगे तो रोजा टूटेगा, खुद से वॉमिट हो जाए तो रोजा नहीं टूटेगा। फिर इसी तरह खून या ताकत पहुंचाने वाले इंजेक्शंस, जान के लगवाएंगे तो टूटेगा रोजा वरना नहीं। हिजामत यानी सिंगी के जरिए खून फासिद निकालना, यानी जिसको आज के दौर में अब कपिंग कहते हैं, हिजामा भी कहते हैं। इसी तरह अगर खून खुद ही खुद निकल जाए, जैसे कि नकसीर फूटना, दांत टूटना या उसका खून निकलना वगैरह, तो इससे भी रोजा नहीं टूटता, क्योंकि ना तो ये हिजामत है और ना हिजामत के मानी में है। हिजामत समझ गए ना, ये वो हिजामत नहीं जो हमारे कल्चर में बाल काटने ली, ये हिजामा है। तो हिजामा नहीं कराना चाहिए रोजे की कैफियत में। फिर एक और चीज जिससे रोजा टूटता है वो है जिमा। इसकी तफसील क्या है कि अगर कोई शख्स फर्ज रोजे की हालत में या रमजान के महीने में जिमा कर ले तो इस पर रोजे की कजा के साथ साथ कफारा मुगल्लिजा, मुगल्लिस के गलीज से थिक गाढ़ा, यानी बहुत सख्त इसकी कह लीजिए कि कंपनसेशन है, और वो क्या है, कफारा मुगल्लिजा है, और वो है कि एक गर्दन आजाद करना, और अगर आजाद ना कर सके तो 2 महीने मुसलसल रोजे रखना। मुसलसल से क्या मुराद है कि अगर एक भी जोड़ा तो काउंटिंग फिर शुरू से होगी, और अगर ये भी ना कर सके तो 60 मिसकीनों को खाना खिलाना। तो ये आप समझ गए कि कितना बड़ा कफार है। इसलिए ऐसी कोई कैफियत और ऐसी कोई हालत और हरकत नहीं करनी चाहिए कि इंसान इस चीज के लिए मजबूर हो जाए। देखिए यही तो रोजे का मकसद है, और अल्लाह ने खुद ही कह दिया उहिल्लकुम लैलतस्सियामी, अल्लाह ने रात को हर काम हर चीज इजाजत दी, खा सकते हो पी सकते हो, तो उसमें ताल्लुक भी कायम हो सकता है। फिर इसके बाद एक और चीज क्या कि बेदारी की हालत में मनी खारिज होना, जागते में शहवत के साथ जिस्म से कोई सेक्रीशन निकल जाना, ख्वा इस तपना और मुबाशरत के साथ हो या बोसा देने से या बीवी के साथ होने से, यानी इरादे के साथ अगर इंसान इस कैफियत में आ जाए तो रोजा टूट जाएगा। फिर इसी तरह से किन चीजों से रोजा नहीं टूटता, ये नेक्स्ट टॉपिक है। नंबर एक, भूल कर या नादानिस्ता तौर पर खा लेने या पानी पी लेने से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं सूरत अल बकरा में, हाँ याद कीजिए, इन तुआखिज़ना, ऐ हमारे रब अगर हम भूल गए हों या खता की हो तो हमें ना पकड़ना, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, तो हमारे दीन में भूल चूक माफ है। और इसी तरह जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफर करे, सिवाय इस चीज के कि जिस पर जबर किया जाए और इसका दिल ईमान पर बरकरार हो, यानी खुदा न खास्ता अगर कोई इस्लाम ही छोड़ दे रोजे की हालत में तो फौरन उसका रोजा टूट जाएगा, और अल्लाह ताला कभी ऐसा ना हो कि हमारी नस्लों में से भी कोई इस्लाम से पलट जाए। और अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं, वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तातुम बिही वलाकी मा तअम्मदत कुलूबुकुम, नादानिस्ता यानी बगैर इरादे के जो बात तुम कहो इसके लिए तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, लेकिन इस बात पर जरूर गिरफ्त है जिसका तुम दिल से इरादा करो। तो क्या पता चला कि बगैर इरादे के और इस तरह के अमल के तो और बात है, लेकिन जानबूझ के करेंगे तो फिर रोजा टूट जाएगा। फिर अगला पॉइंट देखिएगा कि किस तरह से रोजा नहीं टूटना, अगर किसी ने रोजे के दौरान कोई चीज चख कर थूक दी तो इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता बिला उजर ऐसा करना मकरूह है। अब बास खवातीन है वो कहती है हमारे मर्द बड़े पिकी हैं नमक के लिए और इस तरह के लिए, चख के थूक दीजिए। वैसे तो मियाँ को भी थोड़ा सा सब्र सिखाना चाहिए, और क्या आपको अभी तक नहीं पता चला कि रोज कितना डालते हैं? इसका एक तजुर्बा आज से करना शुरू कीजिए। अमूमन एक ही जितना पकता है ना, 1 किलो सब्जी में कितना नमक है और 1 किलो गोश्त में कितनी मिर्चें हैं, आजकल बनाकर दफा चेक करके लिख लीजिए ताकि रोजे में कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि जो फूड चेन्स होती हैं वो रोज चक चक के थोड़ी आपको बर्गर बना के देते हैं, एक रेसिपी बनी और उसको प्रिजर्व कर दिया। तो बहरहाल शरण इजाजत है, लेकिन अब आप खाएंगे नहीं सिर्फ थूकेंगे। इसी तरह रोजे की हालत में थूक निगलने से भी रोजे पर फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जानबूझकर थूक को जमा करके निगलना मकरूह है, यानी थोड़ा थोड़ा रखें और फिर घूंट की तरह भरें कि गला साग गीला हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोजे की हालत में मिसवाक चाहे खुश्क हो या तर, इसके करने से भी रोजा नहीं टूटता, बल्कि ये तो पसंदीदा है। अपने आप को जितना जिस हद तक साफ सुथरा रख सके, दूसरों को करीब बैठे वो को तकलीफ ना हो, उतना इंशाल्लाह ज्यादा अजर होगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट देखिए, रोजे की हालत में अगर गुसल करते हुए कान में खुद ब खुद पानी चला गया तो रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भला? इसलिए कि नंबर एक ये इख्तियार से बाहर है, और दूसरी बात है कि कान के रास्ते पानी चला भी गया तो गले में तो उसकी तरावट नहीं आएगी ना। अब हमारे कल्चर की और हमारी शरीयत की अलावा की बातें करें तो लोग तो कहते हैं कि जी पता नहीं किस किस चीज से रोजा टूट जाता है। ऐसा नहीं है, बाज लोग कहते शीशा देखने से रोजा टूट जाता है और बाज कुछ। तो आप देखिए कि दीन ने कितनी सहूलत से चीजें बताई हैं। तो गुसल करते हुए चला गया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं कुछ भी मुंह में गया तो रोजा टूट गया, तो फिर तो कोई रोजा रख ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन तो अंदर जा ही रही है ना हर एक के। तो जो चीजें आपके मेरे इख्तियार में नहीं है उसके बारे में फिक्र ना कीजिए। फिर आगे क्या कि रोजे की हालत में खुद से कह आ जाने से रोजा नहीं टूटता, रोजे की हालत में दांतों से खून निकलने से रोजा नहीं टूटता। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बशर्ते के खून हलक में ना जाए, अगर खून हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। रोजे की हालत में किसी को खून देने से भी रोजा नहीं टूटता। कैसे अल्लाह ताला ने हमें ये छोटी छोटी चीजें दिखा दी और बता दी। अब ये तो थी वो चीजें जिनसे रोजा नहीं टूटता। मैं आपसे शऊर बेदार करने के लिए चंद सवाल कर सकती हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा। और वो क्या है? क्या गीबत से रोजा टूटता है? ये सवाल कोई नहीं करता आज तक, मुझसे तो नहीं किया किसी ने, शायद औरों से पूछ लेते होंगे। इमेजिन कीजिए, झूठ बोलने से रोजा टूटता है, फोहश देखने से रोजा टूटता है, और इसी तरह की एक लंबी लिस्ट आप खुद अपनी बनाएं। और इस तफ्ते कल्बक वलव अफतूक, खुद से सवाल कीजिए, खुद से फतवा तलब कीजिए, चाहे दूसरे जितना मर्जी बता दें। तो आपको मुझे इस चीज की फिक्र करने की जरूरत है। हम सब अपने ऊपर इन चीजों को लेकर देखें तो यकीन कीजिए कि ये बातें हमारे लिए अक्सर हैं। तो ये था एक गो थ्रू रोजे के बारे में मसाइल का। अब चंद बातें करते हैं, और वो क्या है रोजे के कुछ जनरल इश्यूज। नंबर एक, जनाबत की हालत में रोजे की नियत करना और तुलुए फजर के बाद गुसल करना जायज है। देखिए इंसान का इख्तियार नहीं होता कुछ चीजों पे, तो अगर कोई इस हाल में सुबह करे कि टाइम इतना ही है कि कुछ खा पी ले और या खिला ले पिला ले, औरत है तो जाहिर है वो खाना बनाती है, और उसके फौरन बाद समेट कर फजर की नमाज से पहले पहले गुसल कर ले तो इसकी इजाजत है। क्योंकि आप देखिए कि गुसल तो आप बाद में कर सकते हैं लेकिन खाना तो बाद में नहीं खाएंगे। ये है अल्लाह ताला का वो खूबसूरत जुमला जो अल्लाह ताला ने कुरान में 184 में गालिबन कहा कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर। तो सहूलतें हैं कुछ, और इस हिस्से को गौर से सुनिए क्योंकि इससे मुतजाद बहुत सारी बातें हमारे कल्चर में बिला तहकीक डाल दी गई हैं। फिर और एक चीज कि रमजान में फजर से पहले हैज और नफास से पाक हो जाने वाली औरत पर, खवातीन को अल्लाह ताला एक बीमारी में मुब्तला करते हैं हर महीने, उसके अहकामात भी जानने बहनों के लिए बहुत जरूरी हैं। और इसके लिए किताबु तहारा नाम की एक बुक जिसमें ये पीरियड्स और ये गुस्ल के मसाइल हैं, उसको एक दफा सुन लीजिए। और अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप फिर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन बहरहाल नमाज नहीं छोड़नी, रोजा नहीं छोड़ना, यानी आप सुबह उठे देखा आप पाक हैं क्लियर हैं तो बस रोजे की नियत करके रोजा रखिए और जाइए और बाद में शावर लेकर नमाज अदा कीजिए। हमारे कल्चर में 12 बजे के बाद और उसके बाद शाम के बाद, देखिए मगरिब की नमाज से 1 मिनट पहले भी अगर ये कैफियत शुरू हो जाती है तो वो रोज़ा टूट जाता है। हाँ, अल्लाह आपको इसका अजर देगा लेकिन आपने इसकी कज़ा करनी है। सेम थिंग इधर है कि आप फजर से पहले फारिग हो चुके हैं तो फिर रोज़ा जान के छोड़ना सिर्फ इसलिए कि अभी मैं और इंतज़ार कर लूँ, तो ये भी रोज़ा आपको फिर बाद में रखना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि रोजेदार दाढ़ के दांत या इसके अलावा दूसरे दांत उखाड़ सकता है, जख्म का इलाज कर सकता है और आंख और कान में कतरे यानी ड्रॉप्स भी डाल सकता है। इससे रोजा नहीं टूटता, अगरचे इसकी लज्जत हलक में महसूस ही क्यों ना हो। अब आप देखिए, एक तो है डेंटिस्ट, अब वो तो दूसरों के भी दांत तोड़ेगा बीमारी के दौरान, उसकी तो बात नहीं हो रही। आपका अपना दांत अगर किसी वजह से निकलवाना पड़ता है और दवा के कुछ कतरे भी डालने पड़े तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे दीन को बहुत ही लॉजिकल और खूबसूरत बनाया। जहनी तनाव और सांस की तंगी को कम करने के लिए मुंह में स्प्रे का इस्तेमाल करना भी रोजेदार के लिए जायज है। शायद इसको नेबुलाइजर कहते हैं, मेरा गुमान है, यानी कोई ऐसी चीज जिसके जरिए अस्थमा का मरीज या सांस का प्रॉब्लम है जिनको, तो वो ऐसी कोई चीज इस्तेमाल करे तो कोई हर्ज की बात नहीं। वैसे भी तो आप और मैं ऑक्सीजन ले ही रहे हैं। फिर इसी तरह होंठ सूख जाने के बाद रोजेदार इन्हें पानी से तर कर सकता है लेकिन पानी से गरारे नहीं कर सकता। यानी हल्का सा होंठों के ऊपर जो पिपड़ियां सी बन जाती हैं उसके ऊपर आप पानी लगा लें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन फिर गागल्स नहीं करेंगे। एक वजह, अल्लाह की हदों के करीब ना जाओ। तो ये थे चंद मसाइल। अब हम देखते हैं कुछ करने के काम जो इंशाल्लाह हमने करने हैं रमजान में, ताकि अल्लाह ताला हमें इसका पूरा हक अदा करने की तौफीक दे। हालांकि हम 4 दिन में बहुत कुछ शेयर कर चुके हैं लेकिन जो लोग सिर्फ आज ही सुन रहे हैं तो उनके लिए चंद चीजें ऐड की गई हैं। पहली बात है कि नमाज को सही वक्त पर अदा करें और खुशू और खुदू के साथ नमाज पढ़ें। अगर आराम कर लें तो ये नियत कर लें कि जिस्मानी और दिमागी थकावट दूर होगी तो दोबारा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाऊंगा, तो ये आराम भी इबादत में लिखा जाएगा। कितना प्यार करते हैं अल्लाह ताला हमसे, अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला बनाए। फिर इसी तरह से कुरान मजीद की तिलावत करें या इस्तराहत यानी आराम करें। अगर जुमे का दिन हो तो मगरिब तक दुरूद शरीफ पढ़ने में मसरूफ रहें, इस वजह से कि जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत बहुत है। और एक चीज ऐड कीजिए और वो क्या है, सूरत अल कहफ की तिलावत। फिर इसी तरह एक काम जो बहुत अहम है, इसको जम बनाइएगा कि गुनाहों से बचने का पूरा एहतमाम करें। ये बात झूठ तमस्खुर यानी किसी का मजाक उड़ाना और ईजा रसानियां यानी किसी को तकलीफें देना या बद नजरी, किसी को नजर ताड़ना, लड़का है तो लड़की को और लड़की है तो लड़के को, या किसी को भी ऐसी बुरी नजर से देखना, इससे इज्तनाब करें। ये चीजें आपके रोजे पे असर डालती हैं और इनसे बचने की जरूरत है। फिर इसके बाद इफ्तारी के वक्त दुआ मांगे। रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बिलाशुबा इफ्तारी के वक्त रोजेदार के लिए एक खास दुआ है जो रद्द नहीं होती। ये इब्ने माजा की रिवायत है। तो उस वक्त कुछ देर पहले ही जो रखना है रख लीजिए। कल तो हमने नियत किया है कि खजूर और पानी से इफ्तारी करनी है, फिर मगरिब की नमाज पढ़नी है, फिर इंशाल्लाह जो पकौड़े समोसे हैं वो खाने हैं। तो फिर तो आपके लिए बहुत मौका है ना, बच्चों को भी बिठा लीजिए, खुद भी बैठिए, सब घर वाले बैठे हो, चलो बेटा आज आप दुआ कराए, आज आप करवाइए, तो उस वक्त घर का माहौल दुआएं मांगने वाला हो और पकौड़े वगैरह मांगने वाला ना हो। वो भी मांग ले, कोई गुनाह उसमें भी नहीं है, लेकिन तो ये सिर्फ वो चीज़ें जो हमें चैनलाइज करती हैं और हमारे बच्चों को पता चलेगा कि हमने सिर्फ खाना ही नहीं था छोड़ा हुआ, हमने और भी बहुत कुछ छोड़ा हुआ था जिसके साथ रोज़ा पूरा होता है। देखिए, खाना पीना छोड़ना तो एक आखिरी हद है जिस पे रोज़ेदार आता है, छोड़ना तो बहुत कुछ है, हर वो चीज़ छोड़ देनी है जो दुनिया में अल्लाह ने मना की हुई है, और जायज़ को छोड़ेंगे तो कल नाजायज़ को भी छोड़ने का मौका मिलेगा। फिर इसी तरह इफ्तारी के बाद ये दुआ पढ़नी है, ज़हब अज़माऊ व बतलतिल उरूक़ व सबत अलज्र इंशा अल्लाह। फिर इसका तर्जमा क्या है कि प्यास चली गई और रगें तर हो गई और अजर साबित हो गया इंशाल्लाह। ये तो आप मज़ा तब चखेंगे जिस वक्त आप वाकई खजूर मुंह में डालकर पानी का घूंट भर के ही दुआ पढ़ेंगे, लगता है अल्लाह को कैसे पता चल गया। हाँ, तो बहरहाल ये रोज़ा खोलने के बाद की दुआ है। फिर अगली चीज़, अपने बीवी बच्चों से शफकत और मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करें। क्यों भला ये कहा गया, गुस्सा बड़ा आता है, माएं बच्चों पे चीखती तो नहीं, चीख नहीं सकती, बस कहती ठहर जा जरा, रोजा खोल ले, फिर तुझे पूछती हूँ। और वो सहमे होते हैं कि इफ्तारी के बाद पकौड़े भी मिलने हैं और मामा की डांट भी मिलनी है। इसी तरह बाज दफा शौहर बीवी के आपस में खटपट बड़ी हो जाती है, और खास तौर पे जब लॉकडाउन के डेज हों। कुछ टिप्स हैं कि हम रोजे की हालत में जब बहुत ही वक्त साथ रहना पड़े तो आपस के ताल्लुकात कैसे रहें, अच्छे रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हो। तिर्मिजी की ये रिवायत है। तो बाहर के लोगों के साथ तो हम बड़े अच्छे होते हैं और हमारे ड्राइंग रूम मैनर्स भी बड़े हसीन हैं, लेकिन असल बात है कि हम अपने घर वालों के साथ कैसे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में नमाज में क़याम किया, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाह करे कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो। ये तिर्मिजी की हसन रिवायत है। तो रात की तरावी का अहतमाम करना है। पुख्ता अज़्म करते हैं कि बाकी ज़िंदगी गफलत और अल्लाह ताला की नाफरमानी में बर्बाद नहीं करनी, क्योंकि गुनाहों वाली ज़िंदगी बेकैफ और परेशानियों से भरी हुई है, और अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में दोनों जहान का लुत्फ़ है। तो ये था ज़ादुल ख़ैर। हमने रमज़ान की कुछ चीज़ें दोहराई हैं, कुछ सीखी हैं, कुछ समझी हैं। अब चंद जुमले मुझे बोलने की इजाज़त दीजिए कि मोमिन को रोज़े क्यों रखवाए जाते हैं। देखिए, रमज़ान के फ़ौरन बाद अगले दिन ईद है। क्या दिखाती है कि रमज़ान में तुमने अल्लाह के कहने पे हलाल भी छोड़ दिया? और ईद के दिन क्या है? कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफतुम फिल अय्यामिल खालिया। एक जेम लिखी है जो हमारी सौमे रमज़ान बुक का भी जेम है, कि मोमिन की ये दुनिया रमज़ान है और मौत के साथ ही उसका ईद का दिन शुरू हो जाएगा। यहाँ हराम से रुकिए, नाफरमानी से रुकिए, गैर मुहज्जब कामों से रुकिए। आप रोज़े की कैफियत में आ गए। आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते क्योंकि आप फास्टिंग हैं। हाँ, मरने के बाद मोमिन की रूह के साथ खूबसूरत मामला, या तुहन नफ्सुल मुतमईना इरजीला रब्बी की रादियतम मर्दिया। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस दुनिया में अगर हमने अपने ऊपर अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ पाबंदियाँ लगाई भी हैं, तो अल्लाह ताला हमारी आखरत बड़ी खूबसूरत करे। और लहुम फी हमा यश्तहून व लकुम फी हमा तद्दाउन। सारी इश्तहाएँ, सारी ख्वाहिशात, सारी तमन्नाएँ आखरत पर डाल दीजिए। अल्लाह ताला आपको मुझे रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह साथ साथ हमारे सेशन छोटे छोटे रिमाइंडर्स चलते ही जाएंगे पूरा महीना, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे आज ज़ादुल ख़ैर जो हमने ख़ास तौर पे रमज़ान के नाम पे डिज़ाइन किया था, उसका ये सेशन पूरा हुआ।